नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कालकुण मरियो घटोत्कच, सारा लोग दुखी हो गया। पांडव भगवान खूब खुश हो गया है। अर्जुन पूछे थे एकला ही राजी किया भैया, भगवान की ओर थारो बेटो है वो पापी है, कर्ण मार दियो तुम्हारे दो फायदा हुआ। एक तो बात कर्ण कने थारे मारने की शक्ति बा इर पर लागी और इन मारने रो दोष मन नहीं लागी, मैं मार तो इन घटोत्कच में। सब लोग दुखी है, कुछ फर्क नहीं पड़े, भगवान खूब खुश है। धृतराष्ट्र ने पूछा कि इतना कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ, फिर क्यों नहीं कर्ण ने अर्जुन को मारा? ये भगवान की कोई कृपा थी। संजय बोले, आप लोग तो रोज ही रात्रि में ऐसा करने की सलाह देते थे, हम लोग सब मिलकर के कर्ण कर्ण प्रातःकाल होते ही कर्ण और दूसरे योद्धाओं की बुद्धि मारी जाती थी, भगवान की मोहिनी शक्ति से सब मोहित हो जाते थे, इसलिए उसने अपनी अमोघ शक्ति से कृष्ण और अर्जुन को नहीं मारा। इसमें मैं देव को प्रधान कारण मानता हूं। आगे कथा बताऊं, धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय अब आगे की बात बताओ, घटोत्कच के मारे जाने पर क्या कौरवों में पांडवों में फिर युद्ध हुआ? यदि हुआ तो किस प्रकार युद्ध हुआ? पांडव तो सब घटोत्कच में दुखी थे ना, फिर कैसे युद्ध हुआ? संजय ने कहा कि महाराज, कर्ण के द्वारा उस राक्षस के मारे जाने पर आपके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए, वे ऊंचे स्वर से गर्जना करने लगे, बड़े वेग से इधर उधर दौड़ने लगे। उस घोर अंधकारमयी रात्रि में पांडव सेना का संहार हो रहा था, इससे राजा युधिष्ठिर का मन बहुत छोटा हो गया और वे भीमसेन से बोले, भीमसेन धृतराष्ट्र की सेना को रोको, मैं तो घटोत्कच के मरने से बहुत घबरा गया हूं, अब मुझसे कुछ भी काम नहीं हो सकता। यह कहकर वे अपने रथ में बैठ गए, आंखों से आंसू बहाने लगे, लंबे लंबे श्वास लेने लगे। कौन? युधिष्ठिर जी। उस समय कर्ण का पराक्रम देखकर वे अधीर हो गए। उनको इस अवस्था में देख करके कृष्ण ने कहा, कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर, आप ऐसे समय में खेद करते? आपके लिए व्याकुलता शोभा नहीं देती है, यह तो अज्ञानी मनुष्यों का काम है। उठिए, शस्त्र संभालिए, युद्ध कीजिए। इस महासंग्राम का गुरुतर भार तो आप पर है, आप ही घबरा जाएंगे तो फिर आपको विजय कैसे मिलेगी? कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने आंख पोंछते हुए कहा, महाबाहु, मुझे धर्म की गति मालूम है, परंतु क्या करूं, इसी कारण से मैं दुखी हो रहा हूं। कृष्ण भगवान ने कहा, धर्म को जानने वाला दुखी हो सकता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, जो मनुष्य किसी के किए हुए उपकारों को नहीं मानता उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। घटोत्कच बालक था तो भी उसने यह जानकर कि अर्जुन अस्त्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने गए हैं, वन में हम लोगों की बड़ी सहायता करता था और इस महासमर में उसने हमारे लिए बड़े बड़े पराक्रम दिखाए, वो मेरा भक्त था, मुझसे प्रेम करता था, मेरा भी उस पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उसकी मृत्यु से मैं शोक संतप्त तो हो रहा हूँ, मूर्छा आ रही है। देखिए कौरव किस प्रकार हमारी सेना को खदेड़ रहे हैं, महारथी द्रोण और कर्ण कितने सावधान हैं, कैसा हर्षनाद कर रहे हैं। आपके और हमारे जीते जी घटोत्कच कर्ण के हाथ से क्यों मारा गया, अर्जुन के देखते देखते उसकी मृत्यु क्यों हुई, अब मैं स्वयं कर्ण को मारने के लिए जाऊंगा। यह कहकर अपना धनुष उठाकर टंकार करते हुए उतावली के साथ चले। यह देखकर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये राजा युधिष्ठिर क्या करने जा रहे हैं, ये कर्ण को मारने के लिए जा रहे हैं, इस समय इन्हें अकेला छोड़ देना ठीक नहीं है। यह कहकर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से अपने घोड़ों को हाका और दूर पहुंचते हुए महाराज युधिष्ठिर को पकड़ दिया। क्या करने जा रहे हैं, किसके साथ, कर्ण के साथ, किसको साथ में लेकर कर्ण के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। एक तरफ आप कर्ण की इतनी महिमा गाते हैं, इतना पराक्रम, और दूसरी तरफ आप अकेले जा रहे हैं। ठहरी है, युधिष्ठिर जी महाराज ठहरे, इतने में ही व्यास जी उनके सामने प्रकट हो गए। व्यास जी कहने लगे, कुंती नंदन बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, मैं आज तुमको बहुत बड़ी बधाई देने आया हूं और बड़ी प्रसन्नता की बात सुनाने आया हूं। कर्ण के साथ कई बार मुठभेड़ हो जाने पर भी अर्जुन जीवित बच गया और कर्ण ने अर्जुन को ही मारने की इच्छा से इंद्र की दी हुई शक्ति बचा रखी थी। द्वैरथ युद्ध में उसका सामना करने के लिए अर्जुन नहीं गए, बहुत अच्छा हुआ। यदि चले जाते तो आज कर्ण इन पर उस शक्ति का प्रहार करता, ऐसी दिशा में तुम कितनी भयंकर विपत्ति में फंस जाते। सूत पुत्र के हाथ से घटोत्कच का मारा जाना तुम्हारे लिए प्रसन्नता की बात है युधिष्ठिर, घबराओ मत, काल ने ही इंद्र की शक्ति से उसका नाश करवाया है, तुम्हें क्रोध और शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर सभी प्राणियों को एक दिन मरना तो पड़ेगा ही, उसकी चिंता छोड़ो, अपने भाइयों को साथ में लेकर कौरवों का सामना करो। और मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि आज के पांचवें दिन इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। युधिष्ठिर किसी भी परिस्थिति में धर्म को मत छोड़ना, धर्म का चिंतन करते रहना, दया तप दान क्षमा और सत्य, इन सद्गुणों का प्रसन्नता पूर्वक पालन करना। याद रखना युधिष्ठिर, यतो धर्मस्ततो जय है, जिधर धर्म होता है उसी पक्ष की विजय होती है, यही मैं तुम्हें कहने के लिए अकस्मात प्रकट हुआ। इतना कहकर व्यास जी अंतरित हो गए। व्यास जी के समझाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं ने कर्ण को मारने का विचार छोड़ा, किंतु धृष्टद्युम्न से कहा, वीरवर तुम द्रोणाचार्य का सामना करो, क्योंकि उनका विनाश करने के लिए तुमको दिव्य धनुष, दिव्य बाण, दिव्य कवच और दिव्य तलवार अग्नि के साथ मिली है, पूर्ण उत्साह के साथ द्रोण पर धावा करो, किसी प्रकार उनसे भयभीत मत हो। जनमेजय शिखंडी यशोधर नकुल सहदेव द्रौपदी के पांच पुत्र प्रभद्रगण द्रुपद विराट सात्यकी और केके राजकुमार और अर्जुन, ये सब के सब द्रोण को मार डालने के लिए चारों ओर से आक्रमण करें। इसी प्रकार हमारे रथी हाथी सवार घुड़सवार और पैदल योद्धा भी द्रोण के ऊपर धावा बोल दें, उन्हें रथ में मार गिराने का प्रयत्न करें। पांडुनंदन युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा होने पर सभी सैनिक आचार्य द्रोण का वध करने के लिए उन पर टूट पड़े। उन्हें सहसा आते देख द्रोणाचार्य ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। तब राजा दुर्योधन ने भी आचार्य के जीवन की रक्षा के लिए पांडवों पर धावा बोल दिया। फिर तो दोनों ओर के योद्धाओं में युद्ध छिड़ गया। उस समय बड़े बड़े महारथी भी नींद से अंधे हो रहे थे। वे निशाना भी लगाते हैं पर नींद आ जाती है तो निशाना चूक जाता है। थकावट से उनका वजन चूर चूर हो रहा था, उनकी समझ में नहीं आता था कि क्या करें। भयानक इस अर्धरात्रि निद्रांत में सैनिकों के लिए हजार पहर किसी ये रात जान पड़ रही थी। किसी में भी लड़ने का उत्साह नहीं था, सब ढीले पड़ रहे थे। आपके तथा आपके शत्रु सैनिक सभी ऐसे थे, उनके हाथ में शस्त्र टिकता ही नहीं था, न बाण टिकता था। क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके सेना का परित्याग तो कर सकते नहीं, पर करें क्या, निद्रांत हुए हुए थे। न चाहते हुए खूब नींद आ रही थी। कुछ लोग हाथियों पर बैठे बैठे झटका ले रहे थे, कुछ लोग रथों के अंदर खंभे के सहारे से नींद ले रहे थे, कुछ लोग घोड़े पर झपकियां लेने लगे। घोर अंधकार में नींद से नेत्र बंद अपने आप हो जाते थे तो भी सूरवीर बार बार चेता करते थे। कुछ तो नींद में इतने बेसुध हो रहे थे कि शत्रु उन्हें मार रहे थे और उनको पता ही नहीं चलता था और मरो मरो को मार देते। सैनिकों की ये अवस्था देखकर अर्जुन को बड़ी दया आई। उन्होंने बड़े ऊंचे स्वर में अपने और तुम्हारे शत्रुओं को सावधान करते हुए कहा, योद्धाओं इस समय तुम्हारे वाहन थके हुए हैं, वाहन भी निद्रा भी भूत है, तुम लोग भी निद्रा में अंधे हो रहे हो। यदि तुम सबको स्वीकार हो थोड़ी देर के लिए लड़ाई बंद करो, जो जहां है वहां सो जाओ और फिर रात्रि में जब चंद्रोदय हो, नींद का कुछ वेग कम हो, थकावट हो जाए, फिर दोनों दल युद्ध करेंगे। बोलो आपको मेरा प्रस्ताव कैसा लगता है। अर्जुन की बात सुनकर पांडव सेना तो प्रसन्न हुई, महाराज आपकी सेना ने इतनी प्रशंसा की, वाह अर्जुन वाह, वीर हो तो ऐसा हो जो स्वयं गुड़ाकेश है, नींद को जीतने वाला है, परंतु हम सबको सोते देख करके इसने सबको सोने का मौका दिया। बड़ी प्रशंसा करते हुए कहा, अर्जुन तुम में वेद अस्त्र बुद्धि पराक्रम धर्म सब कुछ है, तुम जीवों पर दया करना जानते हो, तुमने हमें जो आराम दिया है उसके बदले हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अर्जुन तुम्हारा कल्याण हो और इस युद्ध के अंदर तुम्हारी विजय हो। हम किसी कारण से दुर्योधन के पक्ष में लड़ते हैं परंतु हमारा मन इसके पक्ष में नहीं है। जाओ अर्जुन, हम सबकी दुखी आत्मा तुम्हारे इस आनंदमय निर्णय से आशीर्वाद देती है, तुम्हारा सभी मनोरथ पूरा हो। अर्जुन की प्रशंसा करते करते सब अर्जुन के और आपके सैनिक आराम से सोने लगे। कोई घोड़ों की पीठ पर, कोई रथ की बैठक में, जहां थे वहीं लुढ़क गए। कुछ लोग हाथी के कंधे पर पसर गए, कुछ जमीन पर सो गए, कुछ आयुध गदा तलवार फरसा फ्रास कवच धारण किए हुए लोग अलग अलग जगह अपने पास ससरे लिए सो रहे थे। उस समय थके हुए हाथी घोड़े और सैनिक इन लोगों को आंख बंद करते ही प्रगाढ़ निद्रा आ गई। उस समय उनकी दशा बड़ी दयनीय थी, कितने दुखी थे युद्ध करते करते। जब पूर्व दिशा में ताराओं के तेज को क्षीण करते हुए भगवान चंद्रोदय का चंद्रोदय हुआ क्षण भर में सारा जगत प्रकाशमान हो गया, अंधकार मिट गया, चंद्रमा की कोमल किरणों से सारी सेना स्वतः ही जाग उठी और अपने अपने दल के लोग अपने अपने दल में खड़े होकर युद्ध करने लगे। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया, कभी उत्साह कभी उपालंब दोनों प्रकार के शब्द कहने लगा। आचार्य इस समय शत्रु थककर विश्राम ले रहे हैं, ये उत्साह खो बैठे हैं, हमारे दाव में फंस गए हैं, ऐसी दशा में यदि उन पर कोई न कोई रियायत न करें और सोते हुए हो कोई मार दे तो हम पांडवों को खूब आराम से जीत सकते हैं। आज तक हम ऐसे मौकों पर आपको प्रसन्न रखने के लिए सब तरह से क्षमा करते आए। उसका फल ये हुआ कि पांडव थके होने पर भी बलवान होते गए। हमने आपको क्षमा किया उस बात के लिए। क्या होता है, ब्रह्मास्त्र आदि जितने दिव्य अस्त्र हैं सब आपके पास हैं। संसार में पांडव या हम लोग कोई भी धनुर्धर युद्ध में आपकी समानता नहीं करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आप अपने दिव्य अस्त्रों से देवता असुर गंधर्वों सहित तीनों लोगों का संहार कर सकते हो। परंतु जब आपके सामने पांडवों का तीसरा भाई आपका प्रिय शिष्य अर्जुन आपके सामने आता है तो आप उसे क्यों क्षमा करते हो, मुझे कारण समझ में नहीं आता। मुझे एक ही बात समझ में आती है, आप अंदर से पांडवों से मिले हुए हो और मेरा ये दुर्भाग्य है कि वो अर्जुन को आपसे मृत्यु नहीं पहुंचाता है। दुर्योधन की बात सुनकर द्रोणाचार्य कुपित हो गए। मूर्ख, बुढ़ा हो गया हूं, संग्राम में अपनी शक्ति पर लड़ने की चेष्टा करता हूं, जान पड़ता है तुम विजय दिलाने के लिए अब मुझे नीच कर्म करवाओगे। आराम का प्रस्ताव रखा, नींद का प्रस्ताव रखा और सोते हुए योद्धाओं को मार दे, मैं ऐसे शस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा, नींद में सोए हुए के ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। बुरा हो चाहे भला हो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी हां में हां हमने बहुत मिलाई, बहुत अन्याय किया, पर ये अब अन्याय मेरे से नहीं होगा, इसलिए जाओ। और जब ये सैनिक जग जाए उसके बाद तुम अर्जुन के साथ युद्ध करो। सव्यसाची के कुपित होने पर देवता गंधर्व यक्ष राक्षस कोई नहीं जीत सकता। खांडव वन में मालूम है इंद्र का इन्होंने सामना किया, अपने बाणों से उनकी वर्षा रोक दी, बल के घमंड में फूले हुए यक्ष नाग देवताओं को परास्त किया। घोष यात्रा के समय चित्रसेन आदि गंधर्वों ने तुम्हें बांध दिया था, उस समय तुमको किसने छुड़ाया। दुर्योधन सुनकर के नीचा मुख कर लिया। देवताओं के शत्रु निवात कवच नामक दैत्यों को जिन्हें स्वयं देवता भी नहीं मार सके उनको अर्जुन ने परास्त किया। हिरण्यपुर में रहने वाले हजारों दानवों को उसने जीता है। उस पुरुष सिंह अर्जुन को मनुष्य कैसे हरा सकता है। हर तरह से चेष्टा करने पर भी उन्होंने तुम्हारी सेना का सत्यानाश कर डाला। अब सब तो तुम रोज अपनी आंखों से देखते ही हो। द्रोणाचार्य अर्जुन की प्रशंसा करने लगे तो आपके पुत्र ने कुपित होकर कहा, आज मैं दुशासन, कर्ण और मामा शकुनी सब मिलकर कौरव सेना को दो भागों में बांटेंगे। एक में मोर्चा हम लोग संभालेंगे और दूसरी तरफ आप संभालोगे। युद्ध में अर्जुन को आज हम मार करके रहेंगे। आचार्य ने कहा, वाह दुर्योधन, वाह, खूब अच्छी समझदारी की बात बोली। जाओ, परमात्मा तुम्हारा कुशल करे। कोई ऐसा क्षत्रिय आज तक पैदा हुआ ही नहीं जो अर्जुन का नाश करे। तुम दुर्योधन उसका नाश करते हो तो मैं तुम्हें बधाई दूंगा। दुर्योधन, बेहोशी में बात मत करो। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, असुर, नाग, राक्षस उसका बाल बांका नहीं कर सकते। कैसी मूर्खता की बातें करते हो। अर्जुन से लोहा लोगे। कोई कुशल पूर्वक लौटाया, जयद्रथ को तुमने बचा लिया, बड़े बड़े महारथियों को तुमने बचा लिया, अभी भी तुम्हारा संदेह नहीं मिटा। उनके प्रति तुम अनसंत बातें करते हो, खानदानी क्षत्रिय होकर ऐसी बात करते हो। अपने लिए खुद ही अर्जुन से लड़ो और उन्हें मार डालो। जाओ, हमारे पास क्यों बार बार आते हो, क्यों मुझे उपालम्ब देते हो? तुम ही इसी वैर विरोध के मूल कारण हो, जाओ तुम ही सामना करो। थोड़ा बहुत इसमें कारण सबसे बड़ा है तुम्हारा मामा, जो कपट से जुआ खेलने में बड़ा बहादुर है, उस धूर्त जुआरी और दूसरों को अधिक धोखा देने वाला शकुनी, और तुम जाओ पांडवों से करो युद्ध, करो अर्जुन से युद्ध। तुम भी तो धृतराष्ट्र के सामने बड़े बड़े शब्दों के पुल बांध कर कहते थे, पिताजी ये कर्ण महान बहादुर है, कर्ण के पीछे हम सब भाई सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, मैं कर्ण और दुशासन तीनों मिल जाएं तो पांडवों को जीत लेंगे। और तुम्हारा बाप हम लोगों की बात नहीं मानता था, तुम्हारी डींग भरी बातें मान करके दे, अच्छा प्रिय पुत्र तुम्हारी ऐसी बात है तो जाओ हम तुम्हारी बात मानते हैं, जाओ करो अपनी प्रतिज्ञा पूरी, सत्य करके दिखाओ। और वो देखो अर्जुन निर्भीक होकर तुम्हारे सामने खड़ा है, ये होता है क्षत्रिय का धर्म। अर्जुन के हाथ से मारा जाना जीत होने से कहीं अच्छा है, अर्जुन के हाथ से मर जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम यदि अर्जुन को जीत लोगे वो अच्छा नहीं होगा, जाओ निडर होकर के युद्ध करो। आचार्य द्रोण जिधर शत्रु खड़े थे उधर चल दिए और सेना दो भागों में बट गई, युद्ध आरंभ हुआ। रात्रि के तीन भाग बीत गए, एक भाग शेष रहा। उस समय कौरव और पांडव बड़े उत्साह से युद्ध करने लगे। थोड़ी देर में चंद्रमा की कांति फीकी पड़ने लगी और आकाश में पूर्व दिशा में थोड़ी ललाई आने लगी। उस समय दोनों तरफ के योद्धा अपनी अपनी सवारियां छोड़कर संध्या वंदन करने लगे, सूर्य के सन्मुख होकर उनका जप करने लगे और हाथ जोड़कर सूर्य से प्रार्थना करने लगे। इसके बाद कौरव सेना फिर दो भागों में विभक्त हो गई और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को साथ में लेकर सोमक पांडव और पांचाल योद्धाओं पर आक्रमण किया। कौरव सेना के दो भागों में विभक्त देखकर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन शत्रुओं को बाईं ओर करके आचार्य को दाहिनी ओर रख करके चलो। अर्जुन ने कहा, जो आज्ञा। इस बात को भीमसेन समझ गए। भीमसेन ने कहा, अर्जुन कितनी गहरी बात कृष्ण की है, ध्यान दिया? शत्रु सदा बाईं तरफ रहना चाहिए, बड़े पुरुष सदा दाहिनी तरफ रहने चाहिए। क्षत्रिय माता जिस काम के लिए पुत्र को जन्म देती है उसे कर दिखाने का अवसर आया है अर्जुन, अब तुम पराक्रम करके सत्य लक्ष्मी धर्म और यश का उपार्जन करो, शत्रु सेना का संहार करो। तब अर्जुन ने कर्ण और द्रोण को लांग कर शत्रुओं के चारों ओर से घेरा डाल दिया। मुहाने पर क्षत्रियों को अपनी शराग्नि से दग्ध करता हुआ अर्जुन आगे बढ़ रहा था, उसको कोई नहीं रोक रहा था। दुर्योधन कर्ण शकुनि ने अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा की, उन्होंने उनकी कोई परवाह नहीं की, आगे बढ़ते गए। बाण बरसाते हुए जब अर्जुन चलते थे चारों ओर अंधकार छा जाता था। इस समय द्रोणाचार्य संग्राम में उत्तर दिशा की ओर खड़े हुए थे, पांडव सेना थर्रा रही थी। कितनों पर आतंक छा गया, कुछ भाग चले, मन में उदास हो गए और फिर इधर आचार्य ने बड़े पराक्रम से पांडव सेना के ऊपर आक्रमण किया। पांडव सेना भी आचार्य पर टूट गए। विराट और द्रुपद ने द्रोणाचार्य पर चढ़ाई की, बड़ा घमासान युद्ध हुआ। विराट और द्रुपद दोनों ही इस युद्ध के अंदर समाप्त हो गए। इस प्रकार कई क्षत्रियों का नाश कर दिया। द्रोणाचार्य का तेज बढ़ता गया। पांडव और पांचाल एक ओर से द्रोण पर बाण बरसा करते हैं, दूसरी ओर दुर्योधन कर्ण और शकुनि आदि ये भी करते हैं। भीमसेन क्रोध में भर करके गुरु के सामने गया, द्रोणाचार्य की सेना में घुस गए और उनको कोई किसी प्रकार से डर तो था नहीं। साथ ही धृष्टद्युम्न भी द्रोणाचार्य के पास पहुंच गए। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। रथियों के झुंड एक दूसरे से सटकर लोहा लेने लगे। भीमसेन तो रथों को लात मार के गुड़ा दे और हाथियों को उठा के फेंक दे। भीमसेन किसी प्रकार किसी शस्त्र से डरता ही नहीं था। इतने में पूर्ण रूप से सूर्य भगवान का उदय हो गया, सूर्योपस्थापन हुआ, युद्ध होने लगा और उनके साथ कयों का द्वंद्व युद्ध होने लगा। उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन को छोड़कर बाकी सारी सेना विक्षिप्त, व्याकुल, भयभीत, आतुर, इधर पलायन उधर पलायन, हाय त्राय, ऐसी मची लाशें वहां पर, लाशों का ढेर हो गया, रथों का ढेर हो गया। हाथी वहां पर इतनी जमीन रोक रोक करके पड़े रहे, उनको उठा के फेंके कौन, रखे कौन, हाथी मारे गए। द्रोण और अर्जुन ही अपने अपने पक्ष के रक्षक और घबराए हुए लोगों के आधार थे। ऐसा नहीं कि द्रोणाचार्य से पांडव डर रहे हो, इधर पांडव भी डर रहे थे तो उधर अर्जुन से कौरव भी बहुत डर रहे थे। सारी सेनाएं आपस में गुत्थम गुत्था हो रही थी। इतनी धूल उड़ने लगी, हे महाराज धृतराष्ट्र, हम सब लोग उस महासंहार में एक दूसरे को पहचान भी नहीं सकते थे। इधर कर्ण और भीमसेन, उधर अर्जुन और द्रोणाचार्य, क्या इनका भयंकर युद्ध हुआ है। इधर माद्री नंदन नकुल ने आपके पुत्र को दाहिना कर दिया और सैकड़ों बाणों की झड़ी लगा दी। दुशासन ने सहदेव पर धावा बोल दिया। खूब अच्छी तरह से यहाँ जम करके युद्ध हुआ। कर्ण ने तीखे बाणों की वर्षा करते हुए भीमसेन को रोक दिया। भीमसेन ने गदा उठाकर कर्ण के रथ को तोड़ डाला, सैकड़ों टुकड़े कर दिए। कर्ण ने भीम की गदा उठा ली और घुमा करके उसके रथ पर फेंका। कर्ण पर एक बहुत बड़ी गदा छोड़ी गई, उसको उसने तोड़ दिया और फिर भीम उसी के रथ के ऊपर पहुंच गया और उसके रथ को तोड़ दिया। फिर दोनों ही जमीन पर आ गए, खूब आपस में गदा युद्ध होने लगा। इतने में ही भीमसेन उचक्की खाकर नकुल के रथ पर बैठ गए। इस प्रकार द्रोण और अर्जुन भी आपस में बड़ा भयंकर युद्ध कर रहे थे। दोनों तरफ बड़े भयंकर युद्ध हो रहे थे। द्रोणाचार्य ने ऐन्द्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, त्वाष्टास्त्र, वायव्यास्त्र, वारुणास्त्र खूब एक एक अर्जुन पर डाले। और अर्जुन ने देखो, द्रोणाचार्य जिस समय अर्जुन पर बाण लगाते, हृदय में बहुत मुस्कुराहट थी। बाण छोड़ा, जिस बाण के विरोध में, जो बाण द्रोणाचार्य चाहते थे कि इस बाण का काट इस बाण से होता है, अर्जुन ने वही बाण छोड़ा। ये सब देखकर द्रोणाचार्य मन ही मन में अर्जुन की बहुत प्रशंसा करने लगे और उनको गौरव का अनुभव हुआ कि मेरी देवी विद्या अर्जुन ने किस प्रकार से स्वीकार की है। उनके मन में आया, आज संसार में अर्जुन जैसा कोई दूसरा धनुर्धर नहीं है। आकाश में हजारों देवता, सिद्ध ऋषि और सिद्ध और गंधर्व एकत्रित होकर के ये युद्ध देख रहे थे और द्रोणाचार्य की प्रशंसा कर रहे थे, अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे। तदनंतर द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। सारे प्राणी संतप्त होने लगे। उस समय उस अस्त्र के प्रकट होते ही पर्वत, वन, वृक्ष सहित सारी धरती डोलने लगी। समुद्र में तूफान आया। फिर अर्जुन ने मुस्कुराकर गुरु को ही नमस्कार करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ब्रह्मास्त्र पर किया। सारे उपद्रव शांत हो गए और द्रोणाचार्य अर्जुन के इस कृत्य पर बहुत प्रसन्न हो गए। संजय कहते हैं, इस समय दुशासन धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध कर रहा था। धृष्टद्युम्न को खूब पीड़ित किया। धृष्टद्युम्न ने दुशासन का रथ तोड़ दिया। दुशासन भाग गया। हे महाराज, अब जो युद्ध हो रहा था बिल्कुल धर्मानुकूल था। कोई निहत्थे पर वार नहीं करता था। युद्ध में करणी, नालिक, विष का बुझाया हुआ बाण, बास्तिक, सूची, कपिश, गऊ या हाथी की हड्डी का बना हुआ बाण, या दो फल वाला अपवित्र या टेढ़ा मेढ़ा हुआ बाण कोई प्रयोग में नहीं लाता था। सब लोग शुद्ध और सीधे साधे अस्त्रों का प्रयोग करते थे जो संग्राम के लिए उचित होते हैं। इतने में ही दुर्योधन और सात्यकी की भिड़ंत हो गई। दोनों बचपन के बड़े मित्र रहे। अर्जुन और सात्यकी और दुर्योधन दोनों आपस में पहले बोले कि सात्यकी तू मेरा परम मित्र है। हां दुर्योधन, पर ये क्षत्रिय धर्म कितना कठोर होता है। मित्र मित्र के प्राण लेने के लिए आमने सामने खड़े हो जाते हैं। सात्यकी से दुर्योधन ने कहा कि सात्यकी क्षत्र धर्म को धिक्कार है, चलो तुम मुझ पर प्रहार करो, मैं तुम पर प्रहार करता हूं। तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय लगते हो सात्यकी, यद्यपि तुम पांडवों के पक्ष में हो, यद्यपि तुम अर्जुन के शिष्य हो, लेकिन तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो। सात्यकी ने कहा दुर्योधन, क्षत्रियों का व्यवहार कुछ ऐसा ही होता है, वह गुरुओं से भी लड़ा जाता है, पुत्रों से भी लड़ा जाता है, पिता से भी लड़ा जाता है, भांजा मामा से लड़ता है, मामा भांजा से लड़ता है। दुर्योधन, तुम्हारा प्रेम याद करता हूं तो मैं बाण चलाने की इच्छा नहीं करता हूं, और जब क्षत्र धर्म को याद करता हूं तो मेरे धनुष में कोई बाण बाकी रहता ही नहीं है। ऐसा करो, तुम मेरे पर बाण छोड़ो और मैं हंसते हंसते यहां से मर जाऊं। नहीं सात्यकी, ऐसा नहीं होगा। मैं बाण मारूं और तुम बाण न मारो और ऐसे मर जाओ, नहीं। दुर्योधन भी ऐसा तो नहीं कर सकता, तुम भी चलाओ और हम भी चलाएं। फिर दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इधर सात्यकी जब दुर्योधन को धमकाए घायल करने लगा तो कर्ण दौड़ा दौड़ा उसकी रक्षा में आया। महाबली भीम से सहन नहीं हुआ और कर्ण पर टूट पड़ा। कर्ण भीमसेन पर, भीमसेन के क्रोध की सीमा नहीं रही। दोनों आपस में भयंकर युद्ध करने लगे। उन्हें संदेह होने लगा, अस्त्रवेत्ता आचार्य कहीं हम सब लोगों का एक साथ तो नाश नहीं कर देंगे, ऐसा पांडवों को विचार हुआ। कुंती के पुत्रों को भयभीत देखकर भगवान श्री कृष्ण के पांडवों सावधान, द्रोणाचार्य धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके हाथ में धनुष रहने पर इंद्रादि देवता भी नहीं जीत सकते। जब ये हथियार डाल दें तभी कोई मनुष्य इनका वध कर सकता है। मैं समझता हूं अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये युद्ध नहीं करेंगे, अतः कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुना दो। कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। अर्जुन ने कहा केशव, ये वीरों का काम नहीं है। अश्वत्थामा नहीं मरा है तो नहीं मरा है। यदि पहले अश्वत्थामा को मारे और फिर कहें, ये तो अच्छा नहीं लगा। हमारे ये बात पसंद नहीं आई। भीमसेन ने कहा अर्जुन, केशव की बात को तुम स्वीकार करने और न स्वीकार करने वाले कौन होते हो? हम स्वीकार करते हैं, तेरे से बड़ा मैं हूं, मैं स्वीकार करता हूं। तुझे इस समय चुप रहना चाहिए। बोलो महाराज क्या करना है? कृष्ण का युधिष्ठिर से पूछो कि बोल दोगे कि नहीं। युधिष्ठिर महाराज, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मारा गया, ये बात आप बोल दोगे क्या? युधिष्ठिर जी महाराज बड़ी कठिनाई में पड़ गए। मालवा के राजा इंद्रवर्मा के पास एक हाथी था, उस हाथी का नाम अश्वत्थामा था। भीमसेन ने उसी समय जाकर गदा से उसको मार दिया और हल्ला करके जोर जोर से चिल्ला करके कहने लगा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। मन में उस हाथी का ख्याल करके भीमसेन ने ये मिथ्या बात उड़ा दी। कौन अश्वत्थामा, आज तक किसी हाथी का नाम लेकर के कुछ नहीं बोला गया, आज भीमसेन ऐसे बोलता है, ये बात दूसरे कोई समझे नहीं। इधर द्रोणाचार्य के कानों में ये बात पहुंची तो उनका हृदय सूख गया, सारा शरीर शिथिल हो गया। परंतु वे ये बात भी जानते थे कि मेरा पुत्र इस प्रकार से साधारण युद्ध में मर नहीं सकता है, ये बात झूठी भी हो सकती है। धैर्य रखा और पास में योद्धा धृष्टद्युम्न था, उस पर खूब बाणों की वर्षा की। भीमसेन जोर जोर से फिर चिल्लाता है, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। फिर द्रोणाचार्य कुछ ढीले पड़ते हैं, द्रोणाचार्य फिर ब्रह्मास्त्र प्रकट करते हैं, अनेकों योद्धाओं के मस्तक और भुजाएं कट गई, वीरों की लाशें बिछ गई, बहुत अच्छे अच्छे योद्धाओं के सिर कट गए, 500 मत्स्यों के और 6000 सिंहों के, 10000 हाथियों के और 10000 घोड़ों के मर जाने के बाद अग्निदेव को आगे करके आकाश में विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि, ये 7 ऋषि ब्रह्मलोक से आकाश में आकर सूक्ष्म शरीर धारण किए हुए खड़े होकर द्रोणाचार्य से कह लगे, द्रोणाचार्य हथियार रख दो, यहां खड़े हुए हम लोगों की ओर देखो, अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया है, द्रोणाचार्य आज आपकी मृत्यु का समय है, हम आपको सावधान करने के लिए आए हैं। मृत्यु का समय जानकर मनुष्य को सब प्रकार का अधर्म और क्रूरतापूर्ण कर्म छोड़ देना चाहिए। तुम वेद वेदांग के विद्वान हो द्रोणाचार्य, सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले हो, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे लिए हिंसा, इतने इतने योद्धाओं को मारना शोभा नहीं देता, और वो भी अब मृत्यु के समय। मनुष्य लोक में रहने का समय पूरा हो चुका है द्रोणाचार्य, जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे उन पर तुमने ब्रह्मास्त्र चलाया, निरपराधों को मारा, ये काम अच्छा नहीं किया, फेंक दो ये अस्त्र शस्त्र और फिर कभी ऐसा क्रूर क्रम मत करना। आचार्य ने ऋषियों की बात सुनी, नेत्र बंद किया, ऋषि तो अदृश्य हो गए, ये ऋषि केवल द्रोणाचार्य को ही दिखाई दिए और किसी को दिखाई नहीं दिए। इधर भीमसेन खूब जोर जोर से फिर चिल्लाता है, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, और ऐसे उत्साह से नाच नाच करके बोलता है ताकि द्रोणाचार्य को विश्वास हो जाए। अब अश्वत्थामा के मरने का उनको संदेह हुआ, किनको, द्रोणाचार्य को, व्यथित हो गए और बड़ी ढीली आवाज से पूछने लगे, युधिष्ठिर बताओ मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है या नहीं है, तुम्हारी बात पर ही मुझे विश्वास होगा, बाकी मुझे किसी की बात पर विश्वास नहीं है। द्रोणाचार्य के मन में ये निश्चय था कि युधिष्ठिर तीनों लोकों का राज्य पाने के लिए भी कभी किसी तरह झूठ नहीं बोलेंगे, बचपन से ही उनकी सच्चाई पर आचार्य का पूर्ण विश्वास था। इधर भगवान कृष्ण ने देखा कि सारा काम युधिष्ठिर जी गड़बड़ न कर दे, अतः आचार्य द्रोण इस पृथ्वी पर पांडवों का नामो निशान न मिटा दे, ये मन में धारण करके युधिष्ठिर जी से कहा, युधिष्ठिर यदि द्रोण क्रोध में भरकर अब यदि बच गए, आधे दिन में सारे सैनिकों का संहार कर देंगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम द्रोण से सब लोगों को बचाओ, हम सबको बचाओ। दूसरों की प्राण की रक्षा के लिए यदि कदाचित असत्य भी बोलना पड़े तो वो सो सत्य से बढ़कर होता है। बोल दो, अश्वत्थामा मारा गया, तुमको ज्यादा संदेह हो तो बोल दो अश्वत्थामा मारा गया हाथी या मनुष्य। भीमसेन बोले, महाराज संकोच किस बात का है, आपके गुरु हैं तो आप भी उनके शिष्य हो, उनको भी सोचना चाहिए था कि युद्ध में शिष्यों के सामने कैसे खड़ा हूं। जब आप ये देखते हैं कि मैं गुरु के सामने कैसे खड़ा हूं तो उन शिष्यों को भी देखना चाहिए ना, गुरुओं को भी देखना चाहिए ना, मैं शिष्यों से कैसे युद्ध करूं। आप उनको गुरु देखते हैं, वो आपको शिष्य नहीं समझते हैं। और आपके लिए तो कोई दोष की बात नहीं, मैंने अश्वत्थामा को मारा है, मेरी बात पर विश्वास नहीं किया इसलिए मैंने उनके सामने नाच नाच करके कहा है कि ताकि मेरे उत्साह को देखकर समझ जाए। अब कृष्ण की बात तो आपको मानना ही पड़ेगा ना। कह दीजिए अश्वत्थामा मारा गया। कृष्ण का देरी मत कीजिए महाराज, अश्वत्थामा की सूचना द्रोणाचार्य के कान में अवश्य पड़नी चाहिए। कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर कहने के लिए तैयार हो गए। मन में बड़े भयभीत थे कि मैं असत्य कैसे कहूं, परंतु उनके मन में यह भी था कि इस समय हम लोगों का विजयी होना बहुत आवश्यक भी है, नहीं तो अधार्मिक लोगों का प्राबल्य हो जाने से पृथ्वी पर अधर्म फैलेगा। सब बातों का विचार करके द्रोणाचार्य से कहा, अश्वत्थामा मारा गया हाथी। वो मारा गया तो जोर से बोले और हाथी बहुत धीमे बोले और वहां डुगडुगियां पुंगियां सबने बजा दी। और द्रोणाचार्य जी महाराज एकदम शांत हो गए, शस्त्र वगैरह रखने से पहले चक्कर आने लगा रथ में। धृष्टद्युम्न ने देखा कि द्रोणाचार्य जी बड़े उद्विग्न हैं, चित्त में बड़ा शोक है, ऐसे अवसर पर उसने लाभ उठाने के लिए उन पर धावा बोल दिया। धृष्टद्युम्न ने अपने सुदृढ़ धनुष को लेकर उस पर अग्नि के समान तेजस्वी बाण रखे और द्रोणाचार्य पर एक के बाद एक प्रहार करने लगे। द्रोणाचार्य जी एक तरफ मन से बड़े दुखी और इधर ये बाणों की वर्षा, उन्होंने उन सब बाणों को हाथों में लिया। चाहते थे कि मैं शस्त्र न चलाऊं, हाथों में लेते रहे, नष्ट करते रहे, लेकिन देखा कि मैं शस्त्र नहीं लेना चाहता और ये शस्त्र का प्रहार करता है, तो उन्होंने वापस धनुष उठा लिया और बाणों पर बाण चलाने चालू किया। तो धृष्टद्युम्न के सारथी को मार गिराया। धृष्टद्युम्न ने हंसकर दूसरा धनुष उठाया, आचार्य की छाती में तेज बाण मारा, करारी चोट से उनको चक्कर आया, फिर उन्होंने धनुष उठाया, उसके धनुष को काटा, खूब भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध के पैंतरे में आचार्य ने एक वैतस्तिक नाम के बाण चलाए। वैतस्तिक क्या होते हैं, एक बिल्ले एक बिलांत, देखो संस्कृत में उसको बिलस्ती बोलते हैं, एक बिलांत। ठाकुर जी की मूर्ति अपने घर में संगमरमर की एक बिलांत से ऊंची नहीं रखनी चाहिए। एक बिलांत से ऊंची बिलस्ती पर्यंत जो मूर्ति होती है वो अपने घर में रखो, इससे ऊंची मंदिर में रखनी चाहिए बिलस्ती। तो ऐसे एक एक बिलांत के कितने बाण उन्होंने एक बाण से छोड़े, उसके ढाल तलवार सबको तोड़ दिया। इस प्रकार से धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य से खूब युद्ध कर रहा था और अपने ही शिष्य धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य जी वध करने की इच्छा से एक उत्तम बाण दे करके यूं निशाना लगाकर छोड़ने ही वाले थे कि सात्यकी ने देख लिया। सात्यकी ने तत्काल एक बाण छोड़ा और छोड़ते ही उस बाण को काट दिया और धृष्टद्युम्न बच गया। कर्ण और दुर्योधन के सामने जब बाण काटा तो कर्ण दुर्योधन घबरा गए, सात्यकी का कितना बल। धृष्टद्युम्न को द्रोण के चंगुल से बचा लिया और वो सात्यकी वहां बेखटके धनुष बाण लिए घूम रहा है, कोई उसके सामने नहीं आया। कृष्ण और अर्जुन शाबाशी देने लगे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, जनार्दन कैसा है ये आचार्य के पास खेल सा करता हुआ सात्यकी खड़ा है? एक तरफ प्रसन्नता भी होती है, एक तरफ आश्चर्य भी होता है, एक तरफ भय भी लगता है। अरे इनके पास खड़ा है, इनके बाण व्यर्थ नहीं जाते। सात्यकी ने द्रोणाचार्य का बाण काट डाला तो दुर्योधन आदि को बड़ा क्रोध आया, वे सात्यकी से उलझ गए, सात्यकी उनसे, खूब युद्ध हुआ। और फिर इधर भीमसेन था, भीमसेन ने इनके साथ युद्ध किया और युद्ध करते करते अपने रथ को आचार्य के पास धीरे से ले जा करके फिर जोर से चिल्लाता है, कौन? भीमसेन। गुरुदेव यदि ब्राह्मण अपना कर्म छोड़कर युद्ध न करते तो आज क्षत्रियों का ये भीषण संहार नहीं होता। प्राणियों की हिंसा न करना सब धर्मों में श्रेष्ठ बताया गया है, उसकी जड़ है ब्राह्मण। आप तो उन ब्राह्मणों में से उत्तम वेद वेत्ता हो, ब्राह्मण होकर भी स्त्री पुत्र और धन के लोभ से आपने चांडालों के भांति म्लेच्छों तथा अन्य राजाओं का संहार कर दिया, जिसके लिए आपने हथियार उठाया, जिसका मुंह देखकर आप जी रहे हो, वो अश्वत्थामा तो आपकी नजरों से बहुत दूर मरा पड़ा है, इसके बाद आपको खबर तक नहीं दी गई। जिनका आप पक्ष लेकर यहाँ मरने मारने के लिए आए हो उन कौरवों ने आपको खबर तक नहीं दी है। क्या युधिष्ठिर के कहने पर भी आपको विश्वास नहीं हुआ है? उनकी बातों पर भी आप संदेह करते हैं? भीमसेन के कहते ही द्रोणाचार्य ने अपना धनुष नीचे डाल दिया, अपने पक्ष के योद्धाओं को पुकार पुकार कर कहने लगे, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, तुम लोग स्वयं युद्ध के लिए प्रयत्न करो, अब मेरा युद्ध का समय समाप्त हो गया है, मैं अस्त्रों का त्याग करता हूं। मेरा प्रिय अश्वत्थामा वो ही संसार में नहीं रहा, अब मैं यहां रहकर क्या करूं? सारे अस्त्र फेंक दिए और रथ के पीछे के भाग में जाकर बैठ गए और एक बार सब प्राणियों को अभय दान दिया कि जिन्होंने मेरे साथ युद्ध किया, जिन्होंने मुझे कष्ट पहुंचाया, उन सबको मैं अभेदान देता हूं, क्योंकि अब मेरी मृत्यु का समय है, मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूं। शरीर छोड़ने की अवस्था में प्राणी को किसी के साथ किसी प्रकार का न राग रखना चाहिए, न द्वेष रखना चाहिए, सबको अभेदान देना चाहिए। इस पद्धति से मैं सबको अभेदान देता हूं। यूं कह रहे दम ध्यान में बैठ गए। धृष्टद्युम्न को यह मौका हाथ में लग गया, उसने धनुष बाण तो रख दिया, तलवार लेकर के उनके रथ पर चढ़ गया। द्रोणाचार्य योगनिष्ठ थे, धृष्टद्युम्न उनको मारना चाहता था, बड़े बड़े योद्धा हाहाकार करने लगे, धृष्टद्युम्न गुरु है, धृष्टद्युम्न शस्त्र छोड़ चुके हैं, वे ध्यान में बैठे हैं, ऐसे समय मृत्यु कर इनके ऊपर तलवार का प्रहार करके पाप मत लो धृष्टद्युम्न, शांत। धृष्टद्युम्न नहीं मान रहा है, रथ के ऊपर चढ़ गया, इधर शस्त्र त्याग करके परम ज्ञान स्वरूप अपने स्वरूप में स्थित हो गए, कौन? द्रोणाचार्य। योग धारणा के द्वारा मन ही मन पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उन्होंने मुंह को ऊपर उठाया, सीने को आगे की ओर तान कर यूं स्थिर हो गए। फिर विशुद्ध सत्व में स्थित हो हृदय कमल में एकाक्षर ब्रह्म माने ओंकार ओंकार की धारणा करके देव देवेश्वर अविनाशी परमात्मा का चिंतन किया और ओम ये तो अपन वैखरी में बोलते हैं, मन ही मन में आवाज किए बिना ओंकार का अंदर ही अंदर अनहत नाद से उच्चारण किया और फिर उन्होंने शरीर को त्याग दिया और उस उत्तम गति को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े संतों के लिए दुर्लभ है। वे सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप वाली द्रोणाचार्य ऊर्ध्वलोक को जा रहे थे। सारा आकाश मंडल दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा। इस प्रकार आचार्य ब्रह्मलोक चले गए और धृष्टद्युम्न मोहग्रस्त होकर चुपचाप उनके पास खड़ा रहा। हे महाराज धृतराष्ट्र जी, योग युक्त महात्मा द्रोणाचार्य जिस समय परम धाम को पधारे जा रहे थे उस समय मनुष्यों में से केवल मैं कृपाचार्य श्री कृष्ण अर्जुन और युधिष्ठिर ये पांच ही उनका दर्शन कर सके थे और किसी को भी उनकी महिमा का ज्ञान नहीं हुआ। उसके बाद धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य के शरीर पर हाथ लगाया। उस समय सब प्राणी धिक्कार कर रहे थे। धृष्टद्युम्न पाप मत करो, परंतु जिस समय उन्होंने नाड़ी देखी हृदय पर हाथ रखा उनकी चेतना लुप्त हो गई, वो कुछ बोल नहीं रहे थे कुछ समझ नहीं रहे थे। उस अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका मस्तक काट दिया और बड़ी उमंग भरी आवाज में उस तलवार को घुमाता हुआ सिंहनाद करने लगा। आचार्य के शरीर का रंग सांवला था, उनकी आयु 85 वर्ष की हो चुकी थी, उनके कान तक के बाल सफेद हो गए थे, तो भी आपके हित के लिए वे 16 वर्ष के उम्र वाले तरुण योद्धा के समान युद्ध कर रहे थे। हे महाराज, जिस समय उनका सिर काटा गया उससे पहले कुंती नंदन अर्जुन पुकार पुकार कर कहते रह गए, द्रुपद कुमार आचार्य का वध करो, वध मत करो, उन्हें जीते जी उठा लाओ, ये हमारे लिए परम वंदनीय है, हमारे लिए गौरव है कि ऐसे आचार्य हमको मिले हैं जिनके शिष्यत्व में हमने शस्त्र शास्त्र का ज्ञान किया है, उठा लाओ। पर उसने नहीं सुना। आपके सैनिक भी कहने लगे, मत मारो धृष्टद्युम्न, मत मारो, रट लगाते ही रह गए। अर्जुन तो करुणा में भरकर धृष्टद्युम्न के पीछे दौड़े भी, परंतु सब ने उनको रोक लिया। विशेष करके कृष्ण ने कहा, अर्जुन कहां जाते हो? मैं धृष्टद्युम्न को आज नहीं छोड़ सकता, चुपचाप रहो। धृष्टद्युम्न ने पाप किया है, पाप तो औरों ने भी बहुत किया है अर्जुन, किन किन को मारोगे? अभी यहां से चलने की जरूरत नहीं है। खून से भीगी हुई आचार्य की लाश रथ से नीचे गिर गई और धृष्टद्युम्न ने उनके मस्तक को आपके पुत्रों के सामने फेंक दिया। उस युद्ध में न जाने कितने योद्धा मारे गए थे, अधमरे मनुष्य भी कम नहीं थे। द्रोण के मरते ही प्राय लोगों की हालत मुर्दों जैसी हो गई। हमारे पक्ष के राजाओं ने द्रोण के मस्तक शरीर को बहुत खोजा, पर इतनी लाशें बिछी हुई थी उसमें वो पहचानने में नहीं आए। तदनंतर भीमसेन आया पांडवों में से और उछल करके धृष्टद्युम्न को छाती से लगाया और ऊंचा उठाया, पीठ थपथपाई, कहा धृष्टद्युम्न ये कुंती पुत्र भीम तुमको आज कितनी बार बधाई देता है। याद रखना जिस दिन कर्ण और दुष्ट दुर्योधन मारे जाएंगे उस दिन भी मैं तुम्हें इसी प्रकार गोद में लेकर छाती में लेकर सारे मैदान में घुमाऊंगा और तुम्हें छाती से लगाकर तुम्हें लाखों बधाइयां दूंगा। तुम्हारे कृत्य की कौन निंदा करता है? बड़े जोर से भीमसेन बोला। संजय कहते हैं आचार्य द्रोण के मारे जाने के बाद कौरवों का बड़ा शोक हुआ, सबके आंसू बह चले, लड़ने का सारा उत्साह जाता रहा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन को उस समय बहुत दुख हुआ होगा, फिर उसने कैसे सेना को संभाला होगा? संजय कहने लगे, महाराज सबसे ज्यादा आर्त स्वर से विलाप करता हुआ आपका पुत्र ही रणभूमि को छोड़ करके भग गया। आपके सैनिक भूख प्यास से विकल उदास और जाकर के अपनी बात भी किसको कहे, वहां कोई था ही नहीं। द्रोण की मृत्यु पर भय छा गया। गांधार राज शकुनी, सूत पुत्र कर्ण, मद्रराज शल्य, आचार्य कृप और कृतवर्मा, ये सब अपनी अपनी सेना लेकर वहां से भाग गए। भीमसेन का सिंहनाद किसी से भी सहन नहीं हुआ। संसप्तक लोग पलायन कर गए, कोई हाथी पर चढ़ा, कोई रथ पर चढ़ा, कोई पैदल भागा, कोई पिता से कहता है कि पिताजी जल्दी चलो, कोई पुत्र से कहता है बेटा भगो, कोई भाइयों से कहता है, कोई मामा से कहता है, कोई मित्रों को बोलता है भगो, सब भगे जा रहे थे। आपकी सेना का कुछ अता पता ही नहीं चला। उस समय मार्ग में अश्वत्थामा मिल गया दुर्योधन को भागते हुए। दुर्योधन अश्वत्थामा ने पूछा, दुर्योधन क्या देख रहा हूं, इतनी तुम्हारी सेना डर करके भग रही है चारों तरफ, तुम अकेले इधर भग रहे हो, क्या बात है, कौन सा भय आ गया? दुर्योधन बोलो, तुम्हारे चेहरे पर तो कभी इस प्रकार उदासी छाई मैंने अपनी उम्र में कभी देखी नहीं, तुम स्वस्थ नहीं हो, क्या बात हुई? कर्ण आदि भी दिखाई नहीं देते, शकुनी भी दिखाई नहीं देता, दुशासन तुम्हारे साथ नहीं, क्या आज कोई भयानक युद्ध हो गया? तुम्हारी सेना की ऐसी दशा हो गई, बताओ किस महारथी की मृत्यु हुई है, तुम्हारी सेना इस अवस्था में कैसे पहुंच गई? खुलकर के बात कहो दुर्योधन, मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तुम्हारे लिए मरने जीने के लिए तैयार हूं, बताओ दुर्योधन क्या हुआ? दुर्योधन तो रोता रहा और उसके मुंह से शब्द नहीं निकला, आंसू के अलावा कुछ निकलता ही नहीं था। उसके बाद इधर से कृपाचार्य आए, कृपाचार्य ने कहा, दुर्योधन ने कहा, कृपाचार्य जी आचार्य आप इस सेना के भगने का कारण बता दीजिए। तब कृपाचार्य ने बारंबार विषाद मग्न होकर अश्वत्थामा से द्रोण के मारे जाने का समाचार सुनाया। उन्होंने कहा, हे अश्वत्थामन, अश्वत्थामन ये मतलब कृपाचार्य जी, मामा लगते बाण जाता, हम लोग आचार्य द्रोण को आगे रखकर पांचाल राजाओं से संग्राम कर रहे थे। इस युद्ध में जब बहुत से कौरव योद्धा मारे डाले गए तो हमारे पिता ने कुपित होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया और भल्ल नामक बाणों से हजारों शत्रुओं का सफाया कर डाला। उस समय काल की प्रेरणा से पांडव, कैकेय, मत्स्य और विशेषतः पांचाल वीरों में से जो भी द्रोण के रथ के सामने आए सब नष्ट हो गए। फिर तो पांचाल योद्धा भाग खड़े हुए, उनका बल और पराक्रम धूल में मिल गया, उत्साह खो बैठे, अचेत हो गए। द्रोण के बाणों से पीड़ित देख करके पांडवों की विजय चाहने वाले श्री कृष्ण ने कहा, पांडवों, ये आचार्य द्रोण मनुष्यों से कभी नहीं जीते जा सकते, औरों की तो बात ही क्या है, इंद्र भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। मेरा विश्वास है अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये लड़ाई नहीं कर सकते, इसलिए कोई जाकर इन्हें कह दो कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, झूठी खबर ही सुना दो। ये कृष्ण ने कहा, ये बात सबने मान ली। अर्जुन को पसंद नहीं आई, पर अर्जुन की चली नहीं, भीमसेन की गर्जना के सामने अर्जुन चुप हो गए। युधिष्ठिर ने बड़ी कठिनाई से इसे स्वीकार किया, भीमसेन ने तुम्हारे पिता के सामने जाकर बार बार कहा तुम्हारा बेटा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, किससे किसके लिए युद्ध करते हो? उन्होंने विश्वास नहीं किया। भीमसेन यूं ही कैसा रहता है? भीमसेन ने देखा कि मेरी वाणी को भी मैं कहां सत्य करूं, तो मालव देश के राजा इंद्र वर्मा के अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और ये युधिष्ठिर को दिखाया, ये अश्वत्थामा मर गया। इधर अश्वत्थामा तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुनकर के द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, समस्त सेना में तुम्हारे समान कोई सत्यवादी मेरी दृष्टि में नहीं है, बताओ अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं? देखो मिथ्या भाषण में कितना दोष है, ये जानते हुए भी युधिष्ठिर ने कह दिया अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी को बहुत पतले शब्दों में अश्वत्थामा मारा गया, बहुत ऊंचे स्वरों में अंतिम वाक्य जो बहुत धीरे से कहा गया तुम्हारे पिता ने नहीं सुना और उन्हें तुम्हारे मरने का विश्वास हो गया। और जानते हो इसका परिणाम क्या हुआ? युधिष्ठिर का रथ जो पृथ्वी से ऊपर चलता था पृथ्वी पर आकर के टिक गया। तुम्हारे पिता विश्वस्त थे, दिव्यास्त्रों का त्याग कर दिया, समाधि में बैठ गए। उस समय धृष्टद्युम्न ने पास में जाकर अपने बाएं हाथ से उनके केश पकड़ लिए और फिर तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और उस सिर को उन्होंने भरे रणभूमि में यूं फेंक दिया। सब लोग पुकार रहे थे, मारो मत, मारो मत। अर्जुन तो रथ से उतरकर उसके पीछे भी दौड़ने वाले थे पर वो रुक गए। वो तो कहते थे आचार्य को जीवित ही उठा लो, अपने पास रखेंगे। परंतु उस नृशंस धृष्टद्युम्न ने किसी की भी नहीं मानी और उसने उसको मार दिया। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, आचार्य द्रोण को तो कोई मार ही नहीं सकता था, उनके पास बड़े बड़े दिव्य अस्त्र थे, उस आचार्य को धृष्टद्युम्न ने अधर्म पूर्वक मार डाला, ये अधर्म तो अच्छा नहीं है ना, पाप लगता है ना, वो तो बृहस्पति के तुल्य थे, पर्वत के समान स्थिर थे, गंभीरता में समुद्र के समान थे, ऐसे धर्मिष्ठ पिता को धृष्टद्युम्न के द्वारा अधर्म पूर्वक मारा गया सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा? संजय ने उत्तर दिया, महाराज, आप यदि धर्म अधर्म पाप और पुण्य की परिभाषा करने लगोगे तो ये सब बातें आप पर बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, इसलिए आप तो इतना ही कहो कि द्रोणाचार्य के मरने के बाद अश्वत्थामा ने क्या किया। पापी दृष्टद्युम्न ने मेरे पिता को छल से मारा है। ऐसा सुनकर के अश्वत्थामा पहले तो रो पड़ा, खूब आंसू बहने लगे, फिर रोश आया, सारा शरीर क्रोध से तमतमा गया और बार बार आंसुओं से पूछता हुआ दुर्योधन से बोला, राजन मेरे पिता ने हथियार डाल दिया था तो भी उन नीचों ने उन्हें मरवा डाला। ये पांडव अपने को धर्मध्वजी मानते हैं, हम धर्म का पालन करने वाले, पता चल गया ना इनके अंदर कितना पाप है। युधिष्ठिर ने जो निष्ठापूर्ण कर्म किया है उसे भी सुन लिया, मेरे पिता रण में मृत्यु को प्राप्त होकर अवश्य वीरों के लोक में गए हैं, अतः उनके लिए मुझे कोई शोक नहीं है, किंतु धर्म में प्रवृत्त रहने पर जो उनका केश पकड़ा गया, सब सैनिकों के सामने उनका अपमान किया गया, यही मेरे मर्म स्थानों को छेदने वाली बात है। मुझ जैसे पुत्र के जीवित रहते हुए आज ये दिन देखना पड़ा। दुरात्मा धृष्टद्युम्न ने मेरा अपमान करके ये महान पाप किया है, इसका भयंकर परिणाम उसे जल्दी भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर भी कितना झूठा है, उसने बहुत बड़ा अन्याय करके छल से मेरा पिता का हथियार डलवा दिया, अतः आज ये पृथ्वी उस धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर का भी रक्तपान करेगी। आज मैं सत्य और इष्टापूर्त कर्मों की सौगंध खाकर के कहता हूँ, संपूर्ण पांचालों का संहार किए बिना मैं कभी जीवित नहीं रहूंगा। इस तरह के उपायों से पांचालों का नाश का प्रयत्न करूंगा। मुझे चाहे कोमल या कठोर कितना भी पाप भी करना पड़े तो भी मैं धृष्टद्युम्न को मार डालूंगा, पांचालों का सर्वनाश करूंगा, मैं उनको शांति से नहीं रहने दूंगा। श्रेष्ठ पुरुष को अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए, परंतु मेरे पिता की पुत्रहीन किसी दुर्दशा ये मेरे शस्त्रों के रहते हुई है, धिक्कार है। आज कृष्ण और पांडव मेरा पराक्रम देखें, संपूर्ण सेना को मिट्टी में मिलाकर प्रलय का दृश्य उपस्थित करूंगा। आज मुझे देवता गंधर्व असुर नाग राक्षस कोई नहीं जीत सकता, एक ऐसा अस्त्र जानता हूँ जिसे कृष्ण भी नहीं जानते, अर्जुन भी नहीं जानते, भीमसेन भी नहीं जानते, नकुल सहदेव शिखंडी कोई नहीं जानता है, वो अस्त्र मेरे पास है। पूर्व काल की बात है, मेरे पिता ने भगवान नारायण को नमस्कार करके उसकी पूजा की, भगवान ने उनका पूजन स्वीकार किया और मेरे पिता को कहा वर मांगो। पिता ने उनसे सर्वोत्तम नारायणास्त्र की याचना की, तब भगवान बोले ये अस्त्र मैं तुमको देता हूँ, ये जब तक तुम्हारे पास अस्त्र रहेगा कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, किंतु ब्राह्मण इसका सहसा प्रयोग मत करना, क्योंकि ये अस्त्र शत्रु का नाश किए बिना नहीं लौटता है, अवध्य का भी वध कर डालता है। इसको शांत करने का उपाय ये है, शत्रु अपना रथ छोड़कर उतरकर हथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर इसके शरण में चला जाए, और किसी उपाय से इसका निवारण नहीं हो सकता। यह कहकर उन्होंने मेरे पिता को अस्त्र दिया, मेरे पिता ने उसे ग्रहण करके मुझे सिखा दिया। भगवान ने अस्त्र देते समय यह भी कहा था, तुम इस अस्त्र से अनेकों प्रकार के दिव्यास्त्रों का नाश कर सकोगे, संग्राम में बड़े तेजस्वी दिखाई दोगे। ऐसा कहकर भगवान अपने परम धाम को चले गए। ये नारायणास्त्र मुझे अपने पिता से मिला है, इसके द्वारा मैं युद्ध में पांडव पांचाल मत्स्य और केकेयों को मार भगाऊंगा, पांडवों को अपमानित करके अपने संपूर्ण शत्रुओं का वध कर डालूंगा। ब्राह्मण और गुरु से द्रोह करने वाले पांचाल कुल कलंक धृष्टद्युम्न को तो आज मैं किसी प्रकार जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा की बात सुनकर के कौरवों की भागती हुई सेना लौटने लगी, सभी महारथियों ने बड़े बड़े शंख बजाने चालू कर दिए, भेरी बजने उठने लगी, हजारों नगारे पिटने गाने लगे और बाजों की तुमलत ध्वनि से आकाश गूंज गया। मेघ की गंभीर गर्जना के समान उस तुमुल नाद को सुनकर पांडव लोग भी अब आपस में विचार करने लगे, अब हमको क्या करना है। आज की कथा यही पूरी कर ले।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण।